प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो कृषि का चैप्टर है उसमें हम टॉपिक लेंगे खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान कर सके। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाता है, यानी गरीब भूखा रह जाता है। हमारे देश के कुछ प्रदेश यानी राज्य, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां पर निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। उदाहरण के लिए हम उड़ीसा और बिहार का उदाहरण देख सकते हैं। तो सबसे गरीब जो राज्य है हमारे, एक तो उड़ीसा है, उड़ीसा बोलते हैं आजकल, और दूसरा है बिहार। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। देश के सुदूर क्षेत्र, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का एरिया बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा वाले क्षेत्रों को बात बोलते हैं, तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाती है ना, चक्रवात आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य जो पूर्ति होती है वो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की संरचना की है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का कोई भी आदमी भूखा ना मरे, भूखा ना सोए, इसलिए उसने खाद्य सुरक्षा के लिए सिस्टम बनाया है। उसके दो फैक्टर हैं या दो घटक हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं PDS, पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और एस फॉर सिस्टम। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम आम भाषा में हम राशन की दुकानें कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है, यानी PDS एक कार्यक्रम है जिसका काम ग्रामीण, गांव के और नगरीय यानी शहरों क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ यानी जो खाने की चीज़ें होती हैं, दाल चावल वगैरह है ना, और अन्य आवश्यक वस्तुएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है कि सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। जैसे मान लीजिए मार्केट रेट जो चीनी का है वो इस समय 40 रुपये चल रहा है, तो जो राशन की दुकान है वो हमें 10 रुपये या 12 रुपये किलो के हिसाब से चीनी देगा, है ना। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। यानी जो खाद्य सुरक्षा का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सभी लोग हैं ना, सस्ते दामों पर खाद्य, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो खरीद सकें। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में सामर्थ्य हुए, इससे जो गरीब आदमी है वो भोजन प्राप्त करने में सामर्थ्य हुए, और इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई तथा भंडारों को भी बनाए रखने के लिए चावल तथा गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थित मूल्य निर्धारित करना है। और हम देखते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य वो होता है मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, जिसमें किसान अपने फसल की कीमत सरकारी दामों पर, जो सरकार कम से कम रखती है, उस पर वो बेच सकता है ना, ताकि उसको नुकसान ना हो किसानों को। जैसे कि हमने देखा, ये देखते हैं कि जो किसान होते हैं, जो बीज के बिचौलिए होते हैं, उनसे वो सस्ते दामों पे वो माल खरीदते हैं और बाज़ार में महंगे दामों पे बेचते हैं, तो ना तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है और ना ही उपभोक्ता को फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा बिचौलियों को हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्टेड प्राइस की व्यवस्था करी है, ताकि जिसमें वो क्या कर सके, उन्होंने बता रखा है कि कम से कम हम अपना मूल्य इतना रखेंगे। जैसे मान लीजिए आलू का रेट जो है, हम 8 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे, तो जो किसान है जो चाहता है मैं अपनी जो फसल 8 रुपये किलो के हिसाब से सरकारी मंडी में बेच दूँ तो उस वो बेच सकता है ना। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम FCI बोलते हैं, द्वारा की जाती है। यानी जो जो स्टोर करने की जो काम है वो FCI करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हम देखते हैं कि जितना भी अनाज है, गेहूं, चावल, दालें वगैरह, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है किसानों से और उसको ये PDS सिस्टम द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा, राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को मुहैया कराया जाता है सस्ते दामों पर, है ना। कई जगह जैसे जो चावल है 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है गरीब आदमियों को, जिनके पास BPL कार्ड होता है ना। चीनी 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, तेल है ना, ऑयल, सरसों का तेल मिल जाता है, मिट्टी का तेल मिल जाता है। तो इस प्रकार राशन की दुकान पर ये चीज़ें मिलती हैं। भारत खाद्य निगम यानी कि FCI, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थित मूल्य, समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। यानी FCI का काम है किसानों से अनाज खरीदना। सरकार उर्वरक है ना, सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों में सहाय की यानी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। यानी सरकार जो होती है किसानों को क्या देती है, उर्वरक यानी केमिकल खादों का व्यवस्था करती है, ऊर्जा बिजली वगैरह की व्यवस्था करती है और पानी की व्यवस्था करती है, ताकि किसान अपनी फसल पैदा कर सके, उसमें वो सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि सरकार वो पैसा देती है अनुदान, मतलब ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ को खरीद सके। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे गैस का जो सिलेंडर है वो 1400 रुपये के आसपास का आता है, मगर गवर्नमेंट इस पर सभी उपभोक्ताओं को मिल सके इसलिए वो उस, क्या ये समझ लीजिए 1000 रुपये के, 1000 रुपये या आप मान लीजिए 1400 में से आप ये समझ लीजिए 700 रुपये गवर्नमेंट वहन करती है और 700 रुपये हम लोग देते हैं। तो इससे जो 1400 रुपये का मूल्य का जो सिलेंडर है वो हमें सिर्फ 700 रुपये में मिल जाता है। तो सब्सिडी बोलते हैं उसे, सहायकी बोलते हैं। इसी प्रकार सरकार किसानों को भी सब्सिडी देती है ताकि वो बीज खरीद सकें, केमिकल खाद खरीद सकें, पानी की व्यवस्था कर सकें, बिजली की व्यवस्था कर सकें। अब इन सहायकी यानी सब्सिडियों का बोझ वहन करना असहनीय होने लगा है सरकार के लिए, और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़ा पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। हम पानी और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जल क्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या पैदा हो गई है। हम देखते हैं कि सरकार ने तो थोड़ा सब्सिडी दी है तो जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कभी कभार वो ज़्यादा ही उसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब पानी चलने दे रहे हैं सबमर्सिबल का पानी, फसल ख़राब हो रही है, उसमें लवणता आ रही है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है केमिकल खादों की वजह से, है ना। तो इस प्रकार तो ऊंचा न्यूनतम समर्थित मूल्य, निवेश में सहायकी तथा FCI द्वारा शर्तीय खरीद ने शस्य प्ररूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न को बिगाड़ दिया है। जो न्यूनतम समर्थित मूल्य उन्हें प्राप्त होता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा इसमें अग्रणी उदाहरण है। हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती की जाती है, और हरित क्रांति का प्रभाव भी हम देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अब उपभोक्ताओं को हमने दो वर्गों में बांट दिया, कंज्यूमर को हमने दो वर्गों में बांट दिया, एक गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम BPL लाइन कहते हैं, और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर की लाइन अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर, है ना। तो प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग निर्धारित की गई हैं। गरीब रेखा के नीचे लोगों के लिए कम कीमतें और गरीब रेखा से ऊपर वालों के लिए समान कीमतें। जैसे मार्केट में अगर 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है तो एपीएल वालों को 40 रुपए के हिसाब से ही मिलेगी, जबकि बीपीएल वालों को 10 रुपए के हिसाब से मिलेगी। प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें निर्धारित की गई हैं, परंतु ये वर्गीकरण पूर्णता नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई एपीएल यानी अब पॉवर्टी लाइन वाले श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तन को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचनाएं ऋणों की सुविधा उपलब्ध करा दे तो नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिले और ब्लॉक को खाद्यान्न के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यदि सरकार इसमें सपोर्ट करे, है ना, जो सुविधाएं दे, तो हम देख सकते हैं कि सभी जो ब्लॉक हैं या जिले हैं वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सिर्फ गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिर्फ दाल चावल से ही काम नहीं चलेगा, और भी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वृद्धि की बेहतर संभावना हो। सिंचाई सुविधाओं यानी पानी की व्यवस्था खेतों में और विद्युत उपलब्ध करवाना है जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने से किसान या कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा कि लोग पैसा लगाएंगे, है ना। सतत पोषीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि एवं अनाज के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी घटेगी। हम देखते हैं कि अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम कृषि पर फोकस करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होंगे और लोग शहरों की तरफ कम आएंगे। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि के स्थान पर फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब सिर्फ खाद्यान्न से बात नहीं बनेगी और भी कृषि खेतीबाड़ी होगी, जैसे फलों की, सब्जियों की वगैरह। इससे अनाज तथा दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है और भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश के भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, मगर जो क्षेत्र है वो तो कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह चाहिए, फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, तो जो खेत हुआ करते थे पहले, अब उनको काट काट के सीमेंटेड मकान बनाए जा रहे हैं और खेती की ज़मीन कम होती जा रही है। ये ध्यान देने योग्य है, जब 1951 में जब जनगणना कराई गई थी तो उस समय जो पॉपुलेशन थी 36 करोड़ थी और आज 126 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो नक्शा तो सेम है, क्षेत्र वही है, मगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, उनके खाद्यान्न की समस्या बढ़ रही है। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो आज भूखे मरने की नौबत आ जाती है हम लोगों को। तो हम देखते हैं कि अब क्या है, बढ़ती जनसंख्या के साथ उसका खाद्यान्न भविष्य भी घटता जा रहा है। भूमि के आवासन यानी हाउसिंग जैसे इत्यादि गैर कृषि कार्य भू उपयोग और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोया गया निवल क्षेत्र में कमी आ रही है। हम देख रहे हैं कि लोग मकान बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो खेत जिस पे अनाज उगाया जाता था आज वो ख़त्म किए जा रहे हैं और उनकी जगह मकान या फैक्ट्री बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है, खाद्यान्न की कमी होती जा रही है, है ना। हम ये इतना ज़रूर जानते हैं कि चाहे आदमी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाओ, वो नोट नहीं खा सकता, खाने के लिए हमें अनाज ही चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दिखाना आरंभ कर दिया है। भूमि जो थी उपजाऊ ज़मीन होती थी पहले, अब वो क्योंकि हमने केमिकल खादों का यूज़ करने लगा है, ज़्यादा पानी का यूज़ करने लगे हैं, तो जमीन की जो खुद की उपजाऊ क्षमता थी वो खत्म होती जा रही है। उर्वरक यानी जो केमिकल खाद है, पीड़ानाशक यानी जो कीड़ों को मारने के लिए है, या कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे, को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। अब मिट्टी को निम्नीकरण यानी डिग्रेशन की बात जब हम करते हैं तो हम कह रहे हैं ये केमिकल खादों की वजह से हो रहा है, पीड़ानाशक की वजह से हो रहा है, कीटनाशकों की वजह से हो रहा है। तो जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आई है, और हम देखते हैं जल की कमी के कारण जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें कमी आई है। अक्षम जल प्रबंधन से जल आक्रांतता और लवणता की समस्या खड़ी होती है। और जब हम ये कहते हैं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ तो खेती बाड़ी मुश्किल से हो रही है, और जहाँ पानी है सबमर्सिबल है यूज़ कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे फसल बर्बाद हो रही है, जल आक्रांतता हो रही है ना, और लवणता यानी फसल में नमकीनपन आ रहा है, खड़ी फसल हो रही है और ख़राब होती जा रही है। तो बेटा ये आज का जो टॉपिक था हमारा खाद्य सुरक्षा, अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।